ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आज के राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन कैंप में। और यहाँ पर जैसे कि हम पूरे ही जितने भी सेशंस हम जानेंगे, समझेंगे, आध्यात्मिकता के बारे में गहराई से चिंतन करेंगे, और ये जो कॉन्वर्सेशंस हमारे इतने रहेंगे, तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि कोई भी सेशन को आप मिस ना करें, सभी सेशंस को आप जरूर अटेंड करें, नहीं तो देखें। और क्योंकि एक भी मिसिंग लिंक बीच में होता है तो पूरी कड़ी ही जैसे छूट जाती है। तो राजयोग का मेडिटेशन सीखने का सबसे पहला प्रोसेस ही ये है कि हम सबसे पहले खुद को जानें कि हम कौन हैं। और मेडिटेशन एक्चुअली सीखना किसको है, किसको करना है, क्योंकि योग शरीर का योग ये नहीं है, ये ऐसी चीज का योग है। जब कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं, जोड़ की बात करते हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है जोड़, कनेक्शन, कम्युनियन। तो किस चीज का किसके साथ कनेक्शन, किसके साथ कम्युनियन, किसके साथ जोड़। तो इसलिए सबसे पहले हमको खुद को जानने की आवश्यकता है कि कम्युनियन किसको करना है, मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न राजयोगा मेडिटेशन में, इस सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स में, यही है कि मेरी वास्तविक पहचान क्या है। तो आज का जो मनुष्य है, अपनी वास्तविक पहचान बहुत सारी चीजों से जोड़ता है। हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो बहुत सारे टैग्स हैं जो हम अपने ऊपर लगा देते हैं। आप जैसे कि एक मार्केट में जाते हो तो एक प्रोडक्ट जैसे जो सेल पे रखा होता है उसके ऊपर टैग से पता चलता है ना कि ये प्रोडक्ट क्या है और क्या इसकी कीमत है। तो वो टैग्स उसी तरीके से हमने अपने ऊपर भी लगा के रखे हैं, हमने अपनी वैल्यू भी उन टैग्स के अकॉर्डिंग बना दी है। तो जो जो टैग्स मेरे साथ लगे हुए हैं, जैसे कि नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता का टैग, मैं इंडियन हूं, ब्रिटिशर हूं, अमेरिकन हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो नेशनैलिटी भी हम लोग चेंज कर देते हैं बहुत बार कि हम मेरी वैल्यू एक ब्रिटिशर होके ज्यादा हो जाएगी, अमेरिकन बन के ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि दूसरे जो कंट्री के लोग हैं वो ज्यादा वैल्यूबल हैं और फलानी कंट्री के लोग जो हैं वो इतने वैल्यूबल नहीं है। उसी के अनुसार और बहुत सारे टैग्स हैं जो हम अपने ऊपर लगा के घूमते हैं, जैसे हमारी पोजीशन, पद, मेरा क्या पद है, फलानी ऑर्गेनाइजेशन में, फलानी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में मैं काम करता हूं, तो मैं कंपनी का एमडी हूं, या मैं कंपनी का चेयरमैन हूं, या कंपनी का एम्प्लॉय हूं। तो जैसा मेरा पद होगा उस अनुसार मेरा अंदर इंटॉक्सिकेशन होगा, उस अनुसार मेरी फीलिंग्स होंगी, उस अनुसार मेरी सोच होगी चलने की। तो कंपनी का चेयरमैन होगा, उसका नशा कुछ और होगा, उसकी बात करने का तरीका कुछ और होगा, उसका परसेप्शन कुछ और होगा। लेकिन कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो उसका अपने को देखने का तरीका, नजरअंदाज कुछ और होगा। फिर बात आती है योग्यताओं को लेकर के, क्वालिफिकेशंस को लेकर के। तो योग्यता के अनुसार भी मनुष्य अपने बारे में सोचता है कि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो अपने आप को, अपने दूसरे के सामने अपने सेल्फ एस्टीम को छोटा पाता है। लेकिन कोई हाईली क्वालिफाइड होता है तो उसका सेल्फ एस्टीम अपने आप हाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप को जो है ज्यादा बढ़ा करके एक्सट्रोवर्ट नेचर के साथ बिहेव करता है, एक अधिकार समझता है अपना कि मेरा सोसाइटी में मैं हाईली क्वालिफाइड हूं, तो आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कि धर्म को लेकर के टैग की बात आती है, तो रिलीजन, मैं कौन से धर्म को बिलोंग करता हूं। यहां तक कि अब रिलीजन्स के अंदर भी तो कितने सारे विभाजन हैं, तो उसके अनुसार मनुष्य जो है अपनी पहचान बना के रखता है। फिर बात आती है जेंडर की, तो जेंडर के अनुसार मेल, फीमेल। तो फीमेल है तो उसको बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके काम करना पड़ता है, कहीं पर उसको फायदा भी होता है उस चीज का, कहीं पर नुकसान भी होता है। तो जेंडर के बेसिस पर भी मेरी पहचान बनी हुई है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे टैग्स जो हैं, जो मैंने लगाए हुए हैं अपने खुद की पहचान बनाने के लिए, ये सारे टैग्स, आपको नहीं लगता कि ये सब टेम्पररी है? मेरी असली में पहचान क्या है? आज मैं अपने आपको इन चीजों से रिकग्नाइज कर रहा हूं, अपनी वैल्यू को इन चीजों से रिकग्नाइज कर रहा हूं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी सेल्फ एस्टीम को ड्राइव करती है, मैं किस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, किस क्रीड को बिलोंग करता हूँ, किस रेस को बिलोंग करता हूँ, है ना, मैं कहाँ रहता हूँ, किस घर में रहता हूँ। अगर मेरा घर बहुत बड़ा है तो मेरा सेल्फ एस्टीम और ज्यादा बड़ा होगा, मेरा घर छोटा है तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं सुंदर दिखता हूँ, आईने में अपने आप को देखते हैं, सुंदर दिखता हूँ तो सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा, अच्छा नहीं दिखता हूँ तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा। बॉडी शक्तिशाली है ना, बॉडी जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो और ज्यादा पावरफुल फील करेगा, कॉन्फिडेंट फील करेगा। बॉडी एकदम वीक है, पतला है तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी आइडेंटिटी जो है हमने अपने साथ बांध के रखी है, जो हमारी सेल्फ एस्टीम को या हमारे खुद को ड्राइव करती है। पर अगर ये सारे टैग्स जो है हटा दिए जाएं तो क्या होगा? जिस दिन ये सारे टैग्स नहीं हो, मान लीजिए हमारे साथ, तो मेरी क्या पहचान है? तो अपनी पहचान को फिर मनुष्य ने इस शरीर के साथ जोड़ दिया है। तो जब शरीर की बात आती है, जैसे कि पांच तत्वों से मिलकर के बना हुआ ये शरीर, हड्डी मांस का जो शरीर है, हम अपने आप को इस शरीर से भी पहचानने लगते हैं। तो शरीर की जो पहचान है, जब से बचपन से लेकर हम बड़े हुए हैं, हमें कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि एक्चुअली में तुम हो कौन। किसी ने हमको मैं और मेरा का अंतर नहीं समझाया। जब हम कहते हैं मैं और मेरा, तो मैं कहने वाली शक्ति कौन है और मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? मैं कहती हूँ मैं आंखों से देख रही हूँ, मैं मुख से बोल रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं कहती हूँ ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरा मुख है, यहाँ तक कि ये पूरा शरीर ही मेरा है। तो ये मेरा कहने वाली शक्ति कौन है, जो इस शरीर को भी कह रही है कि ये मेरी है? जैसे मैं कहती हूँ मेरा मोबाइल फोन है या मेरी घड़ी है, तो ये मेरा कहने वाली शक्ति कौन है? तो निश्चय ही ये पांच तत्वों से बना हुआ शरीर भी मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? तो आज जब हम इसका जवाब ढूंढते हैं, तो हमें जवाब मिलता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा हूं, एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, जो इस मस्तिष्क में रहती है, निवास करती है। और आत्मा का जो निवास स्थान है इस मस्तिष्क में, आंखों के बीचों बीच, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो जो दो ग्लैंड्स हैं मस्तिष्क के बीच में, वहीं पर आत्मा का छोटा सा निवास स्थान है। तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ज्योति है। कहा भी जाता है भ्रगुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो सितारे के समान, सितारा तो सभी ने देखा है आकाश में चमकता हुआ, आत्मा का स्थान भी यहाँ भ्रकुटी के बीच एक चमकते सितारे के ही समान है। आत्मा भी एक चमकता सितारा ही है, एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा इस पूरे शरीर को चला रही है, ये शक्ति पूरे शरीर का चलाने के लिए निमित्त है। आंखों के द्वारा वही शक्ति देख रही है, मुख के द्वारा बोल रही है, कानों के द्वारा सुन रही है। तो इस आज से हम अपने आप को ये ना समझे कि मैं शरीर हूं। जब भी आप आईने में खुद को देखें, तो अपने आप को किस तरीके से देखें, किस तरीके से महसूस करें कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा इस शरीर की मालिक होकर के शरीर को चला रही हूं। फिर आत्मा और शरीर के बीच का संबंध क्या है, आत्मा क्या है और शरीर के साथ उसका क्या रिलेशन है? जैसे हमने दुनिया में बहुत सारे योग देखे हैं, तो भौतिक योग होता है, चीजों का समय के साथ योग होता है जिसको हम संयोग कहते हैं, चीजों का व्यक्तियों के साथ भी योग होता है। तो योग मतलब कि जोड़, कम्युनियन। उसी तरीके से जब आत्मा और शरीर आपस में मिलते हैं, तब एक जो चीज बनती है उसको हम ह्यूमन बीइंग या जीवात्मा कहते हैं। तो जीव आत्मा जो होती है, इसलिए उसको ह्यूमन पार्ट है बॉडी पार्ट, बीइंग पार्ट है सोल पार्ट। तो ह्यूमन बीइंग, उसको बहुत सारी चीजों से हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक सीप के अंदर मोती है, तो सीप के अंदर मोती कितना सुंदर लगता है। तो सीप जो है उसकी क्या वैल्यू है अगर उसमें मोती ही ना हो? उसी तरीके से इस शरीर की क्या वैल्यू है अगर इसमें आत्मा ना हो? तो आत्मा इस शरीर में मोती के समान है, और ये शरीर एक शेल की तरह है, सीप की तरह है। तो उसी तरीके से जब हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप सबके सामने, जैसे कि एक ड्राइवर है और एक कार है। तो ड्राइवर जो है गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी की वैल्यू है, वरना गाड़ी खड़ी है। उसी तरीके से शरीर जो है वो एक गाड़ी की तरह है और आत्मा उसमें ड्राइवर है। तो अगर ड्राइवर ना हो तो ये गाड़ी भी किस काम की। फिर हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जैसे एक घर है और उसमें मालिक है, तो घर का मालिक अगर घर में ना हो तो घर की क्या वैल्यू है, घर की क्या कीमत है। उसी तरीके से ये जो शरीर है ये आत्मा का घर है, आत्मा इसमें रहती है, अपना सारा ही जीवन आत्मा इस घर में बीत रह करके बिताती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में हैं, जैसे एक रथ और रथी का एग्जाम्पल आप सबने बहुत बार सुना होगा कि जब किसी का शरीर जा रहा होता है, जब कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो हम उसको अर्थी कहते हैं। अर्थी क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि अरथी मतलब जो रथी था, जो सवार था उस रथ के ऊपर, वो चला गया। तो रथी चला गया तो सिर्फ अर्थी बची है, एक ऐसा रथ बचा है जिसमें रथी नहीं है। तो आत्मा जो है इस शरीर रूपी रथ के अंदर रथी के समान है, एक राइडर के समान है। उसी तरीके से अगर हम एक राजा और उसकी राजधानी को देखें तो आत्मा इस शरीर रूपी राजधानी की राजा है, मालिक है, और हमारी जो ये कर्मेंद्रियां हैं ये मंत्री के समान है, मिनिस्टर्स हैं। तो राजा अपनी मंत्रियों के आदेश से या मंत्रियों से सलाह करके अपनी राजधानी को चलाता है। उसी तरीके से आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ऑब्जर्व करके इस पूरी राजधानी को, इस शरीर को चलाती है। फिर हम देखें एक मोबाइल फोन या एक सिम कार्ड। मोबाइल फोन और सिम कार्ड कितनी कॉमन सी चीज है, हम सबके हाथ में है। एक मोबाइल फोन एक छोटे से सिम कार्ड के बिना कुछ भी नहीं है, राइट? तो इसी तरीके से आत्मा भी एक तरीके से इस मोबाइल, ये जो शरीर है इसको आप एक मोबाइल फोन समझ लो, आत्मा का गैजेट समझ लो। तो इसमें आत्मा क्या है, एक सिम कार्ड की तरह है जिसमें सब कुछ है, सारा डेटा है। और जो मोबाइल है जो दिखाया है उसमें सिम कार्ड कितना छोटा सा होता है ना, लेकिन कितना जरूरी पार्ट है उस मोबाइल का। उसी तरीके से इस शरीर के अंदर आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे शरीर का। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो प्रोग्रामर और रोबोट। आप देखो कि प्रोग्रामर जो है जब एक कोड लिखता है, एक प्रोग्राम लिखता है, और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शंस को रीड करके रोबोट को पास ऑन करता है और रोबोट उसी अनुसार अपनी सारी एक्टिविटी करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, मूवमेंट करता है, हिलता है, डुलता है। तो अगर वो कोड जो है जो प्रोग्रामर लिख रहा है वो प्रॉपर ना हो या प्रोग्रामर कोड ही ना लिखे तो रोबोट भी हिल नहीं पाएगा। तो आत्मा भी इस शरीर के अंदर एक प्रोग्रामर की तरह है, संकल्पों की तरह रूप में आत्मा कोड इंस्ट्रक्शंस हमारे ब्रेन को देती है और ब्रेन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह उसको एग्जीक्यूट करके हमारे पूरे शरीर में नर्वस सिस्टम के थ्रू वो मैसेजेस भेजती है जिससे ये शरीर हिलता है, डुलता है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हैं हम सबके आगे ये बताने के लिए कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। तो हम जान गए हैं अब कि आत्मा जो है इन कर्मेंद्रियों की मालिक है, आत्मा जो है पांचों ही इंद्रियों को चलाने वाली सत्ता है, आंखें, नाक, कान, जीवा और ये त्वचा। तो हमारी ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं इनका ही संचालन, इनकी मालकिन आत्मा यहाँ भ्रकुटी के बीच बैठ करके इस पूरे शरीर का संचालन करती है। अब बहुत से लोग ये प्रश्न करेंगे कि भ्रकुटी के बीच ही आत्मा क्यों बैठती है, आत्मा कहीं और भी तो हो सकती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं आत्मा तो दिल के अंदर भी हो सकती है, लेकिन हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, अगर आत्मा का ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। हार्ट का ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन कभी हमने सुना है कि ब्रेन का ट्रांसप्लांट हुआ हो? नहीं, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान ये भ्रकुटी के बीच है। ऐसे ही अनेक धर्मों में, अपने कल्चर में भी हमने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं जो इस बात को सिद्ध करती है कि आत्मा वास्तव में भ्रकुटी के बीच में, इस फोरहेड में यहाँ पर निवास करती है। जैसे कि हम हिंदू धर्म में तिलक लगाने का जो हमारा रिवाज है, तो तिलक को यहाँ मस्तक के बीचों बीच ही क्यों लगाया जाता है? तो उसका उद्देश्य यही है कि आत्मा का जो निवास स्थान है, जो प्रतीक है, वो है तिलक, बिंदु लगा करके बताना कि आप यहाँ बैठे हो। और कोई भी शुभ काम होता है तो तिलक यहाँ पर ही लगाया जाता है। तो नित्य अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि आप एक चैतन्य शक्ति हो, एक ऊर्जा हो, और ये सोच करके हर एक कर्म करोगे तो हर काम अच्छा ही होगा। उसी अनुसार हम अपना मस्तक भी बहुत बार झुकाते हैं जब हम किसी सेक्रेट प्लेस में जाते हैं, किसी पवित्र स्थान में, कहीं टेम्पल में, किसी मंदिर में, या किसी मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो अपना मस्तक झुकाते हैं क्योंकि हम वहां की एनर्जी को यहाँ फील करना चाहते हैं। तो इसलिए इस स्थान को हम झुका करके ये दिखाते हैं कि वो एनर्जी यहाँ पहुंच रही है। तो ये भी एक तरीके का एक सिंबल है ये दिखाने का। फिर जब बात आती है बायोडेटा की, तो शरीर के बायोडेटा और आत्मा के बायोडेटा की आज हम आपको विस्तार में इसके बारे में बताएंगे। शरीर का बायोडेटा या आपका खुद का बायोडेटा आपने बहुत बार बनाया होगा, उसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करते हो, क्या क्या डालते हो। आप अपना एक फोटोग्राफ डालते हो, आप अपना पूरा नाम लिखते हो, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर क्वालिफिकेशंस डालते हो, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका क्या काम है उसके बारे में डालते हो। तो वो सारी डिटेल्स जो है आपके बायोडेटा में होती है, लेकिन क्या वो सारी डिटेल्स परमानेंट बायोडेटा है, वो परमानेंट चीजें हैं? डेफिनेटली ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ेगी वो सारा बायोडेटा चेंज हो जाएगा। तो परमानेंट क्या है जो आत्मा के साथ जाता है, आत्मा की परमानेंट पहचान क्या है, परमानेंट क्या आइडेंटिटी है? तो आज हम इस सेशन के माध्यम से और आने वाले अन्य बहुत सारे सेशंस के माध्यम से यही जानेंगे, यही समझेंगे कि हमारा रियल बायोडेटा क्या है। तो आत्मा के रियल बायोडेटा में भी वो सारी बातें आती हैं, जैसे कि आत्मा को किन नामों से पुकारा गया है वो भी आप सब जानते हैं, आत्मा का रूप क्या है वो भी हमने देखा कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक चमकते सितारे के समान है। आत्मा के मात पिता कौन है, हम आगे के सेशंस में उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। आत्मा कहाँ निवास करती है, हमने आत्मा का स्थान भी जाना, लेकिन आत्मा कहाँ से आई है उसके बारे में भी हम और विस्तार से जानेंगे। वो समय कौन सा था जब आत्मा आकर के ये पार्ट प्ले किया, और दूसरी बात आत्मा का कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पर। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे करके हम इन सेशंस में जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम आत्मा की क्वालिफिकेशंस या गुणों के बारे में बात करें, तो गुण जो है आत्मा के सात गुण होते हैं, इनको ये सात आत्मा के अविनाशी सात गुण हैं। लेकिन इन अविनाशी गुणों को एक तरीके से कुछ ना कुछ अवगुण ढक लेते हैं, और ऐसी परतें आत्मा के ऊपर जमा होती चली जाती हैं कि वो गुण जो है धीरे धीरे हमारे अंदर ही मर्ज होते चले जाते हैं। तो आत्मा के जो अविनाशी सात गुण हैं, वो जैसे आप देख रहे हैं, एक है पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम। तो ये जो सातों गुण हैं ये आत्मा के, इसलिए हम आत्मा को सतोगुणी कहते हैं। सतोगुणी की जब बात आती है तो सात शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे रेनबो में सात रंग होते हैं, संगीत में सात सुर होते हैं। तो अगर एक भी सुर प्रॉपर नहीं ना लगे तो सरगम नहीं बन सकती, म्यूजिक नहीं बज सकता। और अगर इंद्रधनुष में सातों रंग ही ना हो तो उसको इंद्रधनुष नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही आत्मा के जो सातों गुण हैं, अगर ये धीरे धीरे करके आत्मा में से समाप्त होते चले जाएं, तो इसकी मांग आत्मा करने लगती है। जैसे शरीर के अंदर पांच तत्व हैं, और पांचों ही तत्व जो है शरीर को चाहिए, और कैसे ना कैसे शरीर उनकी पूर्ति करता है। तो जैसे ही जैसे पानी कम होता है तो शरीर को प्यास लगती है, जैसे ही ऊर्जा कम होती है तो हमें भोजन चाहिए। तो ऐसे ही शरीर पांचों तत्वों की पूर्ति कैसे ना कैसे कर लेता है। पर आत्मा इन सातों गुणों की पूर्ति किस आधार पे करती है, कैसे करती है? आज हर कोई इन सातों गुणों को ही मांग रहा है, कैसे ना कैसे करके, लेकिन हमने क्या किया है, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं, इन सातों चीजों को प्राप्त करने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए हैं। और किस आधार पे हम अपने ही गुणों को अवगुणों से आज रिप्लेस कर चुके हैं, तो गुणों की जगह आज अवगुणों ने ले ली है। तो हम देखें, जैसे ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो गुण है, एक मनुष्य के अंदर जागरूकता होती है, जानने की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे के अंदर भी आप देखेंगे उसको जानने की आवश्यकता होती है, वो तरह तरह के प्रश्न करता है। तो हमारे अंदर लेकिन सत ज्ञान न होने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने ले लिया है, भ्रम ने ले लिया है, भ्रांतियों ने ले लिया है, और हम कितने सारे अंधविश्वासों में आज फंसे हुए हैं। और बहुत बार हम अपने ही उस ज्ञान को सत्य ज्ञान समझ करके अहंकारी मनुष्य होकर के सोचते हैं कि मुझे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन हम उतने ही अंदर से खोखले हैं, क्योंकि उतनी ही शांति, सुख, आनंद हमारे जीवन में नहीं है। तो उन चीजों की प्राप्ति के लिए हम दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो कौन सा ज्ञान है वो जिसकी आत्मा को आवश्यकता है? वो है सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान, खुद का परिचय, परमात्मा का ज्ञान, अपने पिता का ज्ञान, समय का ज्ञान, अपनी मंजिल का ज्ञान, मेरी डेस्टिनी क्या है। तो ये बातें अगर जैसे ही आत्मा जानने लगती है अपने बारे में, तो उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। फिर हम बात करें पवित्रता की, तो पवित्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू है, क्योंकि आज जो है प्योरिटी के बिना देखा जाए तो कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता है। हमें भी बाहरी चीज को हम पवित्र करने में लगे रहते हैं, क्लीन करने में लगे रहते हैं, साफ सफाई स्वच्छता पे हम ध्यान देते हैं, लेकिन जब मन की पवित्रता, मन की शुद्धि की बात आती है, तो हम मन को कितना साफ करते हैं। तो मन की पवित्रता का स्थान तो आजकल अलग बहुत सारी चीजों ने ले लिया है। जैसे आजकल का मन जो है गंदे और व्यर्थ संकल्पों में बिजी रहता है, व्यर्थ कर्म करने में बिजी रहता है, तो हम ये सारी चीजों में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रेम, प्रेम का जो गुण है, प्रेम का गुण कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि हम सबको प्यार चाहिए। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा, कोई ऐसी आत्मा नहीं होगी इस संसार में जिसको प्यार नहीं चाहिए। और प्यार ना मिलने के कारण से इंसान ने क्या कुछ नहीं किया है, हाँ, सुसाइड तक करने को वो तैयार हो जाता है, किसी को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है, किसी को हानि पहुंचाने के लिए भी तैयार हो जाता है, प्यार नहीं मिल पाता है। और प्यार नहीं मिलता है तो सबसे पहले टूटता क्या है, दिल टूटता है। तो दिल टूटने के कारण से, हार्ट में ब्लॉकेजेस आने के कारण से मनुष्य का हार्ट फेल ही हो जाता है। तो प्यार की जगह आजकल स्वार्थ ने ले ली है, सेल्फिशनेस ने ले ली है। तो हम सब एक दूसरे से स्वार्थी प्यार करते हैं, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस लगा के प्यार करते हैं कि पहले कोई मुझे प्यार करे, है ना, तब मैं उसको प्यार दूं। तो ये एक्सपेक्टेशंस वाला लव, ये सेल्फिश वाला लव है, और एक दूसरे से इच्छाएं मांगने वाली चीज है। तो जो रियल गुण था आत्मा का, प्रेम का, वो आजकल बिल्कुल ही उसका स्वरूप बदल गया। उसी तरीके से हम जो अगला गुण है आत्मा का, जैसे शांति है, शांति हम सबको चाहिए, किसी को कोई ऐसा नहीं है शांति के लिए। तो कितने लोग पीस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कितने लोग मिलते हैं आपस में और एक दूसरे को शांत करने की कोशिश करते हैं, आपस में देश एक दूसरे को शांत करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं, हालांकि हम सब चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा फसाद कुछ ना हो, लेकिन फिर भी पूरे दिन में हम कितनी बार खुद शांत रहते हैं उसके ऊपर हमारा कितना ध्यान है। हाँ, हमारा पूरा दिन हमने ऐसा बीता कि उसमें हमने कभी क्रोध ना किया हो, या कभी चिंता ना की हो किसी बात की, या कोई किसी प्रकार का डर ना रहा हो, तो ऐसे कितने दिन हमने बिताए। तो शांति जो है वो सबसे पहले मुझसे शुरू होती है। तो इसीलिए क्रोध, शांति और भय, आज इन तीनों ही चीजों ने शांति के गुण की जगह ले ली है। हम गुस्सा करके दूसरे को शांत कर देते हैं, हम चिंता में रह करके सोचते हैं चिंता तो नॉर्मल है, चिंता तो सभी को होती है, मैं चिंता ना करूं तो काम कैसे करूं। और डर तो स्वतः ही आ जाता है मनुष्य के मन में, तो उसकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन गुणों को जो है दूसरी चीजों से रिप्लेस कर दिया गया है। फिर बात आती है सुख की। आज सुख की जो जगह है वो लालच और ईर्ष्या ने ले ली है। और सुख की जब बात करें तो मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार भगवान की और देवताओं की महफिल लगी हुई थी और स्वर्ग का जो समय था वो बीत रहा था, जैसे सतयुग बीत रहा था। तो आपस में वो लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो स्वर्ग में जो सुख है और शांति है उसको कहाँ छुपाया जाए कि आने वाला जो मनुष्य है, जो कलयुगी मनुष्य होगा, उसको सुख और शांति की परवाह हो, उसकी चिंता हो, या उसकी वैल्यू का उसको एहसास हो कि कितनी जरूरी है। तो जैसे डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, सुख को और शांति को हम कहीं अंतरिक्ष में छुपा देते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, अंतरिक्ष में नहीं छुपा सकते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य जो है अंतरिक्ष को भी पार कर लेगा, अंतरिक्ष तक भी पहुंच जाएगा, वहां भी उसका हाथ चला जाएगा। तो कहीं वहां उसने सुख शांति ढूंढ ली तो इसलिए वहां नहीं छुपा सकते। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं सागर के तले में उसको छुपा देते हैं। तो भगवान ने कहा वो भी नहीं कर सकते, मनुष्य जो है कलयुग का वो तो धरती के अंदर तक पहुंच जाएगा, सागर के तले में भी सुख शांति को ढूंढ लेगा, तो वहां पर भी हम उसको नहीं छुपा सकते, फिर हम उसको कहाँ छुपाएं। तो सब लोग बड़ी चिंताग्रस्त हो गए। तो फिर सोचा गया, डिसाइड ये लिया गया कि सुख और शांति को मनुष्य के अंदर ही छुपा दिया जाए, क्योंकि वो सारी जगह चारों दिशाओं में सुख शांति ढूंढेगा, सब जगह ढूंढेगा, परंतु अंदर कभी नहीं झांक करके देखेगा, कभी अंदर नहीं तलाशेगा। तो इसी अनुसार सुख शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम, ये सारे ही गुण आत्मा के निजी संस्कार हैं। सुख भी आत्मा का निजी संस्कार है, और हम यही चीज भूले बैठे हैं कि मेरे असली संस्कार कौन से हैं, मेरे असली गुण कौन से हैं। और उनकी जगह आजकल जो नई चीजें जो हमारे सामने उन्होंने ले ली है, अवगुणों ने ले ली है, जैसे सुख को लालच ने और ईर्ष्या से हमने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया कि मैं अपने आप को जितना आगे करूंगा, मैं अपने आप को जितना चीजों से भरता चला जाऊंगा, जितना बड़ा बनता चला जाऊंगा, उतना सुखी मनुष्य मैं बन जाऊंगा। तो क्या मनुष्य सुखी बना? हमने चीजों को संग्रह करना शुरू कर दिया। आनंद की जब हम बात करते हैं, आनंद नाम के गुण की बात करते हैं, तो हम देखते हैं बड़े बड़े साधु सन्यासी अपने नाम के पीछे आनंद लगाते हैं, परमानंद सुखानंद देवानंद, तो सब आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हम भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? हमने अपनी खुशी अपने आनंद को कंडीशनल निर्भर बना दिया है दूसरी चीजों पर। हम किसी को देखेंगे, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, जब तक मेरे पास उससे बड़ी गाड़ी नहीं आ जाएगी मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक मैं विदेश में चक्कर लगा करके ना आ जाऊं क्योंकि फलाना गया है, तो मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब तक मैं इन चीजों को इकट्ठा नहीं कर लूं तब तक मुझे आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए आज का मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन किस आधार पर? भौतिक चीजों पर निर्भर है, भौतिक दुनिया पर, मटीरियलिस्टिक चीजों पर निर्भर है। वो सब चीजें प्राप्त कर रहा है, प्यार भी प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए पैसा देने को तैयार है ना, पैसा खर्च करने को तैयार है, शांति भी खरीदने को तैयार है, सुख भी खरीद कर प्राप्त करने को तैयार है, उसी तरीके से आनंद भी। लेकिन क्या ये गुण सदा काल के लिए खरीद करके, पैसा खर्च करके, इस भौतिक चीजों के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं? नहीं। तो ये गुणों को कैसे प्राप्त किया जाए वो हम आगे के सेशंस में, राजयोग किस प्रकार से हमारे अंदर इन गुणों को भरता चला जाता है हम जानेंगे। उसी तरीके से जो आत्मा का आखिरी गुण है वो है शक्ति, अर्थात विल पावर, आत्मबल, सेल्फ एस्टीम। तो शक्ति जो है उसका हमने कितना बड़ा रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। हमने आजकल हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं, हम दिखाते हैं अपने पोजीशन का प्रदर्शन करते हैं, मैं कितनी पोजीशन वाला व्यक्ति हूँ, और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं। कि मैं कितना शक्तिशाली हूं, तो ये प्रदर्शन करके हम अपना दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं। लेकिन जहां आत्मा की शक्ति की बात आती है, वहां मस्कुलर स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर्स जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि जैसे ही विल पावर टूटता है, जैसे ही किसी व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम जाता है, तो कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, कितना भी मस्कुलरली बिल्ट व्यक्ति हो, वो भी टूटा हुआ महसूस करता है अपने आप को। तो आत्मा की शक्ति, आत्मा की विल पावर से ही इस फिजिकल पावर की भी वैल्यू है। तो ये जो शक्तियां हैं, इनको भी हम कैसे आत्मा के अंदर भर सकते हैं और ये सारे ही गुण किस प्रकार से आत्मा के अंदर आ सकते हैं, हम अपने आगे के सेशंस में इनको और भी विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।